रात की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ पीली रोशनी थी और दो धड़कनों की लय। विश्वनाथ ने श्यामली की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं था, अब सिर्फ स्वीकार था। धीरे धीरे उसने उसकी चादर के किनारे को उंगलियों से पकड़ा। एक पल के लिए रुके, जैसे उसकी आंखों से अनुमति ले रहे हों। श्यामली ने हल्का सा सिर झुका दिया, इजाजत थी। उसने चादर को धीरे से खींचा। वो उसके कंधों से सरकती हुई नीचे आई और अगले ही पल विश्वनाथ ने उसे एक तरफ रख दिया। कोई उतावलापन नहीं था उस हरकत में, बस ठहराव और चाहत। अब वो उसके सामने खड़ा था और श्यामली उसके सामने। शावर के बाद जो तौलिया विश्वनाथ ने अपने बदन पर लपेट रखा था, वो भी उसने धीरे से खोलकर एक तरफ फेंक दिया। वो उसके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, लेकिन आंखों में अब भी वही नरमी थी। श्यामली की सांस तेज हो गई। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। वो पीछे नहीं हटी। विश्वनाथ ने आगे बढ़कर उसके गाल को छुआ, फिर उसकी ठुड्डी उठाई। अगर जरा भी झिझक हो तो अभी कह दो, उसने धीमे स्वर में कहा। नहीं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया। अब नहीं, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। श्यामली विश्वनाथ के सीने से सट गई। उसका चेहरा उसके कंधे के पास था। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर ठहर गईं। उसकी हथेलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे घूमने लगीं, नरमी से सहेजते हुए। एक पल बाद उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। श्यामली हल्का सा चौंकी, लेकिन मुस्कुरा दी। उसके हाथ तुरंत उसके कंधों के इर्द गिर्द आ गए। विश्वनाथ उसे लेकर बिस्तर की ओर बढ़ा। बिस्तर पर पहुंचकर उसने उसे बहुत सावधानी से गद्दे पर लिटाया। खुद उसके ऊपर नहीं गिरा, बल्कि पहले उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अब स्थिति साफ थी। श्यामली बिस्तर पर पीठ के बल लेटी थी। विश्वनाथ उसके दाईं ओर झुका हुआ था। उसने झुककर उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों के कोनों को, फिर धीरे धीरे उसके होंठों तक आया। इस बार चुंबन लंबा था, गहरा, लेकिन फिर भी संयम से भरा। श्यामली के हाथ उसके कंधों से सरककर उनकी पीठ तक गए। उसने विश्वनाथ को अपनी ओर खींचा। अब वो उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, उनकी सांसें मिल रही थीं। उसने अपना एक हाथ उसके सिर के पास गद्दे पर टिकाया, ताकि पूरा भार उस पर ना आए। दूसरा हाथ उसकी कमर पर ठहरा रहा, हल्का दबाव, जैसे उसे अपने करीब बनाए रखना चाहते हों। श्यामली ने अपना एक पैर मोड़ लिया। उसकी जांघ उसकी कमर से छू गई। वो सहर उठी। धीरे, उसने फुसफुसाया, पर आवाज में मना नहीं था, बस लय थी। हमेशा, उसने उसके कान के पास कहा। उसने उसके गले पर होठ रखे, धीरे धीरे नीचे आते हुए। हर स्पर्श के साथ वो रुकते, जैसे उसकी प्रतिक्रिया महसूस कर रहे हों। श्यामली की उंगलियां अब उसकी बालों में थीं, कभी कसती कभी ढीली पड़ती। कुछ देर बाद विश्वनाथ उसके बिल्कुल पास लेट गया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ करवट लेकर थे। वो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। उसका सिर उसकी बाजू पर टिका था। उनकी टांगें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। मुझे देखो, उसने कहा। श्यामली ने आंखें खोली। उसकी पलकों में नमी सी थी, थकान नहीं, भावनाओं की। तुम्हें पता है, उसने बहुत धीमे कहा, जब आप ऐसे छूते हैं तो लगता है जैसे मेरा हर हिस्सा आपको पहचानता है। उसने उसके गाल को सहलाया। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, उसने कहा। फिर उसने उसे अपने नीचे खींच लिया, लेकिन पूरी कोमलता के साथ। अब वो उसके ऊपर था, पर हाथों से उसे थामे हुए, आंखों में उसकी सहमति देखते हुए। श्यामली ने खुद अपने हाथ उसके गर्दन के इर्द गिर्द डाल दिए। उसका शरीर अब तनाव में नहीं था, वो साथ दे रहा था। उनकी हर हरकत धीमी थी, तालमेल में। बिस्तर की चादर हल्की हल्की खिसक रही थी। सांसों की आवाजें गहरी होती जा रही थीं। वक्त जैसे थम गया था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हिंसरता नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। कुछ देर बाद उनकी लय एक हो गई। श्यामली ने आंखें बंद कर ली और उसके होठों से एक धीमी सांस निकली। विश्वनाथ ने उसके माथे पर पसीने की नमी देखी और झुककर उसे चूम लिया। मैं हूं यहां, उसने कहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता है। कमरे में बाहर की हवा अब भी बह रही थी। अंदर उनकी धड़कनों की रफ्तार धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। विश्वनाथ उसके बगल में लेट गया, उसे अपने सीने से लगाए हुए। श्यामली ने अपना सिर उनके दिल के पास रखा। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझी रहीं। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला, फिर उसने धीरे से कहा, आज मैं पूरी तरह तुम्हारी थी। उसने उसके माथे को चूमा, और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। रात ने उन्हें अपने साये में ढक लिया। बिस्तर पर वो दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए थे, सिर्फ शरीर नहीं दिल भी करीब थे, और उस सन्नाटे में इंतजार खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद वो फिर इंटिमेट होने लगे। विश्वनाथ उसके ऊपर झुका था, लेकिन अब भी अपने हाथों का सहारा गद्दे पर टिकाए हुए, ताकि उसका पूरा भार श्यामली पर ना आए। कमरे में सांसों की आवाजें और गहरी हो गई थीं। श्यामली की उंगलियां उनकी पीठ पर फिसली धीरे, जैसे हर हरकत से उन्हें और पास बुला रही हों। विश्वनाथ जी, उसकी आवाज भर्रा गई, इतना मत रोकिए खुद को। उसने उसकी आंखों में देखा, वो पिघल चुकी थीं। तुम्हें यकीन है फिर से? उसने बहुत धीमे पूछा। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसके कंधे को पकड़कर उन्हें और करीब खींच लिया। अंदर तक महसूस करना चाहती हूं आपको, उसने कांपती सांसों के बीच कहा, मत तड़पाइए। उसकी आवाज में विनती नहीं, चाहत थी। विश्वनाथ का संयम अब भी मौजूद था, पर वो उसकी लय के साथ चल रहा था। उसने उसके गाल पर हाथ फेरा, फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बस उतना ही जितना तुम चाहो। उसने जवाब में उसके होठों को छुआ, एक गहरा बेकाबू सा चुंबन। उसकी टांगें अब उसके चारों ओर कस गईं, वो पूरी तरह उसके साथ थीं। और करीब, उसने धीमे से कहा। विश्वनाथ ने उसे बाहों में समेट लिया। हर हरकत अब तालमेल में थी, दोनों की सांसें एक लय में उठ गिर रही थीं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। श्यामली ने उनकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। अब मत रोको, उसकी फुसफुसाहट उसके सीने से टकराई। विश्वनाथ ने उसकी कमर थामी और उसे अपने साथ पूरी तरह महसूस किया। उनकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। कोई शब्द अब साफ नहीं थे, बस टूटी सी सांसें, अधूरी सी फुसफुसाहटें। और उस पल में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे, बिना किसी सीमा को लांघे, बस चाहत की गर्माहट में लिपटे हुए।